मेरे आत्मीय मित्रों नमस्कार। AFEIS के आज 3 नवंबर 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं आप सबसे संरक्षणवाद के बारे में कुछ बातें करूं। और दरअसल इसके पीछे कारण एक यह भी था कि आज एक लेख छपा है भरत झुनझुनवाला जी का, जो मैं आप सबको प्रोवाइड भी कर रहा हूं। उसका शीर्षक है संरक्षणवाद का लाभकारी स्वरूप। तो इसमें इन्होंने संरक्षणवाद के बारे में बताया है। मुझे ऐसा लगा कि यदि मैं संरक्षणवाद का जो मूलभूत स्वरूप है, या यूं कह लीजिए कि उसकी जो अवधारणा है मूलभूत, यदि वह मैं आपके सामने रखूं तो शायद इस आर्टिकल को आप और भी बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। और खासकर अभी जिसे हम ट्रेड वार कहते हैं या और दुनिया भर की जो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य और व्यापार की स्थितियां आती हैं, उनमें जिन जिन नई स्थितियों के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, शायद उन्हें भी समझने में आपको मदद मिल सकेगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं संरक्षणवाद पर आपसे बात कर रहा हूं। देखिए, शब्द बिल्कुल सरल है, संरक्षण। आप किसी को भी संरक्षण देते हैं। कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, या कोई उसे परेशान कर रहा है, कोई उससे दुश्मनी उससे बदला ले रहा है, तो वो व्यक्ति आपके पास आता है और आप उसे संरक्षण देते हैं, यानी कि उसकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं कि तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं, अब तुम मेरी शरण में आ गए हो। संरक्षण, इसी को आप बिल्कुल उद्योगों पर अप्लाई करते हैं। उद्योग, आप उद्योग को संरक्षण दे रहे हैं। जब हम कहते हैं उद्योगों को संरक्षण दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि उद्योगों को संरक्षण कौन दे सकता है? उद्योगपति तो संरक्षण दे नहीं सकते, क्योंकि वो तो खुद उद्योग लगाए हुए हैं। तो उद्योगों को संरक्षण देने की जो ताकत होती है, जो अधिकार होता है, आप ये कह लीजिए वहां की सरकार के पास होता है। सरकार किसी भी उद्योग को संरक्षण दे सकती है। अब सवाल यह है कि सरकार किसी भी उद्योग को किस आधार पर संरक्षण देगी, है ना? संरक्षण देने के उसके पास हथियार क्या है, औजार क्या है? तो संरक्षण देने के दो औजार सरकार के पास होते हैं, नो डाउट कि वो उसकी नीति के ही हिस्से हैं। पहली बात तो हम देखते हैं कि संरक्षण चाहिए आपको किससे। एक उद्योग है तो उस उद्योग को किससे संरक्षण चाहिए? दूसरे उद्योगों से ही संरक्षण चाहिए? उसको उस दादागिरी से संरक्षण नहीं चाहिए कि कुछ लोग आ गए हैं और वसूली कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अपना उद्योग बंद करो? वो अव्यवस्था की बात है, कानून और व्यवस्था संबंधित संरक्षण नहीं है, ये आर्थिक संरक्षण है। तो एक उद्योग है, मान लीजिए कि एक इस्पात उद्योग है, इस्पात उद्योग को दो लोगों से संरक्षण चाहिए। पहला तो यही है कि उसी के अपने देश में जो दूसरे उद्योगपतियों ने जो इस्पात के कारखाने लगा रखे हैं उससे संरक्षण चाहिए, क्योंकि उसे डर है कि इससे अगर हमारा कॉम्पिटिशन हुआ, जो दूसरे उद्योग हमारे देश में ही लगे हुए हैं, तो कंपटीशन में हो सकता है कि मेरा प्रॉफिट बहुत कम हो जाए, या दोनों रेट गिराते गिराते इस स्थिति पर हम पहुंच जाएं कि उसमें प्रॉफिट ही न रह जाए, तो ऐसी नौबत नहीं आए। यानी कि मैंने एक उद्योग लगाया है इस्पात उद्योग, और मैं आराम से उसमें उत्पादन कर रहा हूं, मैं जो उत्पादन कर रहा हूं वो आराम से बिक रहा है और मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं इस बारे में निश्चिंत होना चाहता हूं। तो सरकार कुछ इस तरह की नीतियां बना दे कि जब कोई भी दूसरा उद्योगपति इस्पात का उद्योग लगाना चाहेगा तो उसे सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, इन इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, उसे इस नियम का भी पालन करना पड़ेगा कि वह इतना ही इस्पात साल में उत्पादित कर सकता है। तो इस तरह के सरकार नियम बना दे। तो यदि सरकार ऐसे नियम बना देती है तो सीधी सी बात है कि कॉम्पिटिशन नहीं होगा, तो उद्योग को संरक्षण मिल जाएगा, जो नया उद्योग है उसको भी संरक्षण मिल जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी फिक्स है, हो सकता है सरकार रेट भी फिक्स कर दे, और इसकी बहुत सारी नीतियां होती हैं, हम उन नीतियों पर नहीं जा रहे हैं। तो ये विद इन द कंट्री हो गई। लेकिन जो हम संरक्षणवाद की बात करते हैं ज्यादातर, उसका संबंध विदेशी उद्योगों से संरक्षण की बात होती है। भारत में इस्पात उद्योग है, लेकिन कोरिया में भी है, चीन में भी है, दुनिया के दूसरे देशों में भी इस्पात के उद्योग लगे हुए हैं। अब उनके यहां जो इस्पात बन रहा है वो अपने ढंग से बना रहे हैं, उनके पास अपनी टेक्नोलॉजी है, उनके पास अपनी लेबर है, उनके पास अपना कच्चा माल है, तो उनका जो इस्पात है उसकी अपनी एक फिक्स प्राइस है। आइए अब हम इसे यहां इस रूप में देखते हैं। मान लीजिए कि भारत में एक जो इस्पात है उसकी कीमत है 1000 रुपए, ठीक है। लेकिन कोरिया में, दक्षिण कोरिया में जो इस्पात उत्पादित हो रहा है, यदि वो वहां से भारत उसे मंगाए तो भारत के बाजार में वो बड़े आराम से 800 रुपए में बिकेगा, यानी यूं कह लीजिए कि 800 रुपए में चलिए भारत को पड़ेगा, 800 रुपए में। अब सीधी सी बात है कि अगर हम बाहर से इस्पात मंगाते हैं तो हमारे यहां जो अपना इस्पात उद्योग है जो 1,000 रुपए में उत्पादित कर रहा है, वह उसके सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि स्वाभाविक है कि लोग सस्ता इस्पात खरीदेंगे तो 800 रुपए वाला इस्पात खरीदेंगे। तो अब सरकार क्या करे, उद्योग क्या करे? उद्योग की इतनी कुवत नहीं है, उसकी इतनी क्षमता योग्यता नहीं है कि वो अपने इस्पात की लागत को कम कर सके, उत्पादन लागत को। उसके चाहे कोई भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि उसके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, उसका कच्चा माल जो है इतना अच्छा नहीं है, उसका आउटपुट इतना बेहतर नहीं है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, हम उन रीजन पे नहीं जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर सरकार कोरिया से मंगाती है इस्पात तो हमारे जो निजी उद्योग हैं वो बंद हो जाएंगे। तो अब सरकार के लिए जरूरी हो गया कि वो इसे संरक्षण दे, इसे सहारा दे, इसे प्रोटेक्ट करे। तो प्रोटेक्ट करने के लिए, खासकर विदेशी उद्योगों से अपने उद्योगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे पास जो सबसे बड़ी नीति होती है वो होता है आयात कर। किसी भी वस्तु जो बाहर से आप मंगा रहे हैं उस पर आप आयात कर लगा सकते हैं, इंपोर्ट टैक्स आप लगा सकते हैं, कस्टम ड्यूटी आप लगा सकते हैं। तो अब सरकार को साफ दिख रहा है कि वहां से जो इस्पात आ रहा है वो 800 रुपए में आ रहा है और हमारा जो अपना इस्पात है वो 1,000 रुपए का है। तो हमें अब विदेशी जो इस्पात है उसको महंगा करना है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि 300 रुपए आयात कर लगा देते हैं, 300 रुपीज। तो ठीक है, वो आ रहा है 800 रुपए में, अब आप उस पर 300 रुपए टैक्स दीजिए, जो भी इंपोर्ट कर रहा है उसे 300 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। तो भारतीय बाजार में पहुंचते पहुंचते उस इस्पात की कीमत हो जाएगी 1,100 रुपए, और हमारे यहां अपने इस्पात की कीमत कितनी है, 1,000 रुपए। तो सीधी सी बात है कि हमारे जो लोग हैं वो हमारे अपने इस्पात को खरीदेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो अपना इस्पात का जो उद्योग है वो संरक्षित हो जाएगा। मित्रों, यह है संरक्षणवाद। सच पूछिए तो भारत की जो अर्थव्यवस्था रही है वो 1990 तक इसी पैटर्न पर चलती रही है, जिसे हम संरक्षणवादी नीति कहते हैं। और ये भारत की अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, दुनिया के ज्यादातर अर्थव्यवस्था इसी पैटर्न पर काम करती रही है। मैं यहां आप सबको याद दिलाना चाहूंगा कि जब ब्रिटेन का अधिकार भारत पर हो गया और ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हो गई थी, उस समय की जो ब्रिटेन की आर्थिक नीतियां हैं उन्हें आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, इसी पैटर्न पर पढ़ करके देखिए, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। होता यह था कि हमारे यहां का तो कपड़ा उद्योग उस समय पूरे के पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। तो भारत से जब कपड़ा ब्रिटेन जाता था तो ब्रिटेन में उस पर बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया जाता था, तो ब्रिटेन में हमारा कपड़ा जाकर के बहुत महंगा हो जाता था। और उस समय ब्रिटेन में जो वस्त्र उद्योग है, औद्योगिक क्रांति हुई थी तो वस्त्र का उत्पादन बहुत ज्यादा हो रहा था, तो हमारे कपड़े को महंगा कर देते थे ताकि उनका अपना कपड़ा वहां बिक सके। और मजेदार बात यह कि जो ब्रिटेन से उत्पादित सामान जब भारत आता था तो उस पर आयात कर बहुत कम लगाया जाता था, तो उनका सामान भारत के बाजार में सस्ता पड़ जाता था। तो उनका सामान चूंकि सस्ता पड़ जाता था, इसका नतीजा ये हो जाता था कि हमारे जो अपने उद्योग होते थे, उस समय हमारे पास बड़े बड़े उद्योग तो थे नहीं, छोटे छोटे उद्योग ही थे, उनको फलने फूलने का मौका ही नहीं मिल पाता था, क्योंकि इस कंपटीशन में वो टिक ही नहीं पाते थे। तो दोस्तों, ये है संरक्षणवाद। 1990 के बाद से पूरी दुनिया ने यह महसूस किया कि नहीं, अभी संरक्षणवाद को छोड़ना चाहिए, इससे उबरना चाहिए। इसीलिए देखिए कि जो 1990 के बाद का जो दौर है उसके लिए एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। याद रखिए कि एक शब्द है उदारीकरण और एक शब्द है वैश्वीकरण, हालांकि दोनों को खींचतान करके आप जोड़ करके एक जैसा मान सकते हैं, लेकिन जो वैश्वीकरण शब्द है इसका मतलब है पूरी दुनिया का एक हो जाना। तो पूरी दुनिया का जब हम एक हो जाने की बात करते हैं तो फिर उसका मतलब यह होता है कि भाई आप कहीं भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पूरी दुनिया एक हो गई है, संस्कृति एक हो गई है, होने जा रही है, इस तरह की बात होती है। तो वैश्वीकरण यानी कि पूरी दुनिया एक हो गई है। लेकिन जब हम उदारीकरण की बात करते हैं तो उदारीकरण का एक्सक्लूसिव जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो आर्थिक नीतियों से है। आपने देखा कि जो संरक्षणवाद की जो नीति है यह संकीर्ण नीति है। हम दूसरे देशों के उद्योगों को अपने यहां नहीं आने देना चाह रहे हैं, लेकिन अब हमने लिबरलाइज्ड कर दिया, हम उदार बन गए, अब हम संकीर्ण भाव के नहीं हैं, संकीर्ण विचारों के नहीं हैं, हमारी नीतियां उदार हो गई हैं। तुम भी आ जाओ, जिसकी मर्जी है आओ, हम स्वागत करेंगे। ठीक है, सरकार की अपनी नीतियां हैं, आपको उन नीतियों को पूरा करना पड़ेगा, उसी के अनुकूल आप आ पाएंगे, लेकिन अब हम अपने उद्योगों को संरक्षण नहीं देंगे, इसके आधार पर हम संरक्षण नहीं देंगे। तो इसको हैंडल करने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ना कोई संस्था तो होनी चाहिए, क्योंकि जब आप पूरी दुनिया के बाजार को एक बना रहे हैं तो एक कोई ना कोई संस्था तो चाहिए। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया, जिसे आप कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। अब उसके तहत जिन लोगों ने साइन किए हैं तो उसके जो अपने रूल्स रेगुलेशन है उसके तहत फिर आप अपने उद्योगों को पनपने देते हैं, आयात कर लगाते हैं, निर्यात कर लगाते हैं, तो उसकी एक सीमा निर्धारित कर दी गई है। तो मित्रों, यही है कुल मिलाकर संरक्षणवाद। तो मुझे लगा कि इस लेख के बहाने इस विषय पर आज बातचीत की जानी चाहिए। तो इस विषय पर बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं विजय शेरावत जयपुर से और हनी सिंह, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।